ये बात जुदी है कि आज हम विरासत में मिली हुई भली चीजों को भी संभाल के नहीं रखते, बुरी को अवश्य संभाल के रखते हैं। वे संभाल के रखे हुए थे, लेकिन रोज रोज की एक मुश्किल। अब एक तो वो जगह बहुत घेरता था और घर इतना बड़ा नहीं था कि उसमें उसे ठीक ढंग से कहीं व्यवस्थित रखा जा सके। फिर मुश्किल उसके साथ ये थी कि कोई भी थोड़ा टकरा जाता था तो शोर बड़ा होता था, बहुत हल्ला मच जाता था एकदम। और रात में और मुश्किल होती थी, चूहे बिल्ली कूदते थे तो बड़ी आवाज आती थी उस सितार से। तो एक तरह से उन्होंने उस सितार के बारे में धीरे धीरे यही धारणा बनाई कि व्यर्थ है ये चीज, कोई काम की नहीं है। जीवन में भली चीजें भी मिल जावे और अगर हम उनका यूसेज ना जानते हैं, उनका सदुपयोग करना ना जानते हो, तो वे भली चीजें भी हमारे जीवन को कोई लाभ नहीं दे पाती है। और आज सारा का सारा हिसाब लाभ और हानि पर टिका हुआ है। हम धर्म भी करते हैं अपने किसी ना किसी लाभ के लिए, तभी तक करते हैं। हम सच बोल सकते हैं अगर हमें उसमें लाभ दिखाई पड़ता है, अगर हमें लाभ दिखाई पड़ता है तो हम झूठ भी बोल सकते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि सत्य बोलना जरूरी है और झूठ नहीं बोलना जरूरी। हमें इससे मतलब है कि मेरा लाभ किसमें है। मेरा लाभ अगर झूठ बोलने में है, मेरा लाभ अगर चीट करने में है, मेरा लाभ अगर किसी को धोखा देने में है, तो मुझे अपना लाभ नजर आता है, उनको भी अपना लाभ नजर आता है कि इसमें तो कोई लाभ नहीं है। और एक दिन सब लोगों ने बैठ करके इस बात का निर्णय ले लिया कि कल मुंह अंधेरे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जबकि कोई देख ना पाए, ये घर का कचरा। हां, अब जो चीज लाभ ही नहीं देती तो वो कचरा ही तो है और क्या। इसको उठा करके अपने को घूरे पे फेंक देना, डस्टबिन में डाल देना। ठीक, निर्णय हुआ और दूसरे दिन उठा करके वो सितार बाहर कचरे में डाल दिया गया। लेकिन दो बार होते ना होते उस रास्ते में कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया सितार बजाता हुआ निकला। घर के सब लोगों ने खिड़की से झांक करके देखा कि अरे वाह, इतना सुंदर सितार बजाने वाला इस गली में कहां से आ गया। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि इतना सुंदर सितार बजाने वाला तो ठीक है, लेकिन वो जो बजा रहा है ना, वो तो अपने ही सितार है। अब तो बहुत मुश्किल हो गई। अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अपना वाला सितार और इतना प्यारा बज रहा है। अरे यार, फेंक करके गलती कर दी। जीवन के अंत में ऐसा ही एहसास हम सबको होता है कि शायद हमने गलती कर दी। वो जो हमें प्राप्त हुआ था उससे, उसका लाभ न लेकर के हमने उसे व्यर्थ जान करके फेंक दिया है। वे सब नीचे उतर के जाते हैं और घेर लेते हैं उस भिखारी जैसे व्यक्ति को कि सुनो मिस्टर, ये जो तुम्हारे हाथ में सितार है कहां से लाए तुम? उसने कहा, कहां से लाए? यहीं तो पड़ा हुआ था घूरे पे, हमने उठा लिया, इसमें छुपाने की क्या। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, हम यही तुमसे सुनना चाहते थे, वो हमारा वाला गिटार है। उसने कहा, ये मत कहो, वो घूरे पे पड़ा हुआ था, मैंने उठाया, ये बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हारा है ये, तुम्हारा दावा अब व्यर्थ है जबकि तुम इसे घूरे पर फेंक चुके थे। अब सारे लोग खड़े हैं, कोई क्या निर्णय दे सकता है? निर्णय तो स्पष्ट हो गया है कि जिसने अपने जीवन को व्यर्थ मान करके एक बार फेंक दिया, फिर उस जीवन पर हमारा खुद भी कोई अधिकार नहीं रहता, हम उसे फिर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो तो कहीं और किसी और के हाथ में हमारा जीवन पहुंच गया, वो सितार की तरह किसी और पर्याय को हमने प्राप्त कर लिया, वो पर्याय तो हमारी नष्ट हो जाती है लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं। यही हमारी अपनी सबसे बड़ी कमी है। हमारे अपने व्यक्तित्व को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि व्यक्तित्व कैसे अच्छा बनता है, जीवन कैसे अच्छा बनता है, इसका साइंस मालूम होना चाहिए, इसका कीमिया, इसका प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। वरना ऐसा तो हमारे हाथ में कई बार जीवन आया है लेकिन हम उसमें से कोई संगीत नहीं बजा पाए हैं और हमने उसे व्यर्थ मान करके हमेशा विषय और कषाय में ही नष्ट कर दिया है। कचरे में डालना यानी विषय और कषायों में उसे नष्ट कर देना, यही तो है। लेकिन उसी जीवन से किसी के जीवन में संगीत उत्पन्न होता देख करके हमें अगर याद आ जावे कि ऐसा ही सितार तो मुझे मिला था, मैं उस पर संगीत नहीं बजा पाया, ऐसे ही सांसें तो मुझे मिली थी, सांसों के तार में संभाल नहीं पाया, इसलिए जीवन मेरा व्यर्थ चला गया। अगर ऐसा हमें थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में भान हो तो संभव है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। भैया, बहुत बुद्धिमान होना, बहुत बलवान शरीर प्राप्त कर लेना या कि बहुत लोकप्रियता हासिल कर लेना, ये व्यक्तित्व की कसौटी नहीं है। आज वर्तमान में यही तीन चीजें व्यक्तित्व की कसौटी हो गए हैं। कौन कितना लोकप्रिय है, कौन कितना बुद्धिमान है और किसको कितना सुंदर और बलिष्ठ शरीर मिला हुआ है, उसका व्यक्तित्व सबसे ऊंचा है। नहीं भैया, शरीर बुद्धि और भावनाओं का जिसके भीतर संतुलन है उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व सबसे श्रेष्ठ है। जो अपने शरीर, अपनी बुद्धि और अपनी भावनाओं को ठीक ठीक ढंग से उपयोग में लाता है। आंख मिली है, बुराई भी देख सकते हैं, भलाइयां भी देख सकते हैं। भलाई देखना आंख का सदुपयोग है, बुराइयां देखते रहना आंख का दुरुपयोग है। शरीर मिला है, शरीर से तपस्या करना, दूसरे का और अपना स्वयं का उपकार करना, ये शरीर का सदुपयोग है। अन्यथा इस शरीर से और दूसरे का और अपना अहित करने का साधन बना करके और जीवन व्यतीत कर देना, ये तो शरीर का दुरुपयोग ही है। भावनाएं मिली हुई हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाना, ये अपनी भावनाओं का सदुपयोग है। दो ही तरह के तो लोग हैं इस संसार में, एक वे जो अपने लिए अमृत खोजने निकलते हैं और एक वे जो दूसरे के लिए विष खोजने निकलते हैं। दो ही प्रकार की भावना के लोग हैं। भावनाओं का सदुपयोग वो है जिसमें हम अपने लिए अमृत खोजने निकलते हैं, दूसरे के लिए विष खोजने नहीं निकलते हैं। अगर हम इनको ठीक ठीक ढंग से, जो हमें प्राप्त हुई है, शरीर प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त हुई, हमें हृदय भी प्राप्त हुआ है, हमें भाव जिसमें भावनाएं हैं हमारे, इन तीनों को अगर हम सदुपयोग करें, बताइएगा क्या शरीर का रूप रंग हमारे व्यक्तित्व को ऊंचाई देता है क्या? तब तो फिर बहुत लोग हैं ऐसे जिनके शरीर का रूप रंग और बलिष्ठता बहुत है। क्या वे अपने जीवन को विषय कषाय से रहित बना पाए हैं? राजा ने एक बार बीरबल से पूछ लिया था, अकबर ने शायद, कि कौन सी चीज श्रेष्ठ है, रूप रंग श्रेष्ठ है या कि गुणवत्ता श्रेष्ठ है? कोई उदाहरण दे के समझाओ। तो बीरबल ने कहा, कहीं अवसर आने पर मैं उदाहरण दे दूंगा। और अवसर दूसरे दिन आ गया, गर्मी के दिन थे, राजा ने कहा कि लाओ बीरबल, पानी पिलाओ। बीरबल तो पहले से ही तैयार थे, दो घड़े मंगवा के रखे थे, एक सोने का घड़ा, इतना सुंदर हीरे जवाहरात जड़ा हुआ, जिसमें पानी भरा हुआ था, और दूसरा काला खराब सा मिट्टी का घड़ा जिसमें भी पानी भरा था। उन्होंने कहा लाओ इतने सुंदर और हीरे जवाहरात से युक्त सोने के घड़े से पानी लाओ, महाराज को पानी पिलाओ। एक घूंट भी तो नहीं पी पाए थे पानी, इतना गर्म उबलता हुआ पानी पिए नहीं जा। महाराज सोने के घड़े का है पानी, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, कितना सुंदर दिखाई दे रहा, पिए पानी पिए। नहीं वीरबल, ये पानी तो नहीं पिया जाता, उस मिट्टी के खराब से दिखाई देने वाले घड़े का पानी मंगाया, स्वाद में भी भला था, शीतलता भी थी, खूब पिया। ये किस घड़े में से आया वो देखो महाराज, उस वाले घड़े। आप एक दिन मेरे से पूछ रहे थे ना कि बाह्य सौंदर्य और रूप रंग श्रेष्ठ है या कि आंतरिक गुणवत्ता श्रेष्ठ है। महाराज स्पष्ट है, निर्णय आप ही को करना है। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हम सोचते हैं कि जब हम शरीर से बलवान होंगे, शरीर हमारा बहुत सुंदर होगा, तब शायद हमारा व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होगा। ये हमारा भ्रम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शरीर के प्रति बहुत लापरवाह हो जाएं, लेकिन इतने कॉन्शस तो ना हो कि हम उसी की सेवा में लगे रहें, घंटों घंटों उसी की सजावट में लगे रहें। भैया नाव है, नाव को दिन भर सजाते रहो तो उस पार पहुंचने के लिए वक्त नहीं रह जाएगा, और सिर्फ इतना ही कि उसमें कोई छेद ना हो जाए, और उस पार जाने के लिए शुरुआत करो तो ही यात्रा पूरी होती है। शरीर तो नाव की तरह है, हम इसको पूरे जीवन और अगर संभालते और सजाते ही रहेंगे तो इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके द्वारा जो हमें प्राप्त करना है ऊंचाई, वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे भीतर की जो गुणवत्ता है, हमारे भीतर की जो भावनाओं की निर्मलता है, बुद्धि की श्रेष्ठता है, वो हमें डेवलप करनी है, और उन सब के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। आज बहुत बुद्धि से लोग ज्ञान हासिल कर रहे हैं, आज देखें तो इंटेलेक्चुअल्स का जमाना है, एजुकेटेड लोगों का जमाना है, बहुत क्राइसिस है एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन एक प्रोफेशन होगा, सब कमर्शलाइज्ड हो गया, सो तो धर्म भी कमर्शलाइज्ड हो गया। ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं हुआ है, धर्म भी हो गया। बुद्धि के चलते तो हम हर चीज को कमर्शलाइज कर ही देंगे, हम हर चीज को एक व्यवसाय बना देते हैं। एक विधान रचा लो, 15 लाख खर्च होंगे, 15 बच जाएंगे। एक पंचकरण करवा लो, 40 लाख खर्च होंगे, 20 लाख तो बच ही जाएंगे। ये हमारा सोच हो गया धर्म के क्षेत्र में भी, और बाकी क्षेत्रों में भी। ऐसा नहीं है कि बाकी क्षेत्रों में नहीं हुआ है। इतने रुपए बेटे के एडमिशन में लगा दो, लेकिन जब डॉक्टर बनेगा तो सारा वसूल कर लेंगे, इंजीनियर बनेगा तो सारा वसूल कर लेंगे, लगा दो बस अभी इस बार तो 10 लाख रुपए नहीं 20 लाख रुपए लगा दो, ज्यादा होगा तो डाका डालेंगे फिर अपन। कौन सा वाला डाका? अब अपन डाका वैसा वाला नहीं डालते जैसे पहले लोग मिल करके जाते थे और बंदूक लेकर के और रात 12 बजे अंधेरे में, अब तो दिन की रोशनी में और दूसरे के गेस्ट बन करके जाते हैं, दूसरे के मेहमान बन के जाते हैं, और फिर सरेआम सबके सामने और बंदूक तान लेते हैं कि मालूम है MBBS और MS है 20 लाख रगो, नहीं तो नहीं होगी मैरिज। ये ढंग अलग है, ये रईसी का ढंग है। डाका डालने वाले इस प्रकार के बड़े बड़े लोग हैं। अगर बेटे का ब्याह है तो समझ लो कि निकले हैं आप देखने के लिए, नहीं निकले हैं। मैं तो यही मानता हूं कि अपनी गैंग में निकले, गैंग काय के लिए निकलती वो आप जानते हैं। आज हमारी बुद्धि के चलते, इस बुद्धिमत्ता के चलते हमने क्या अर्जित किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुद्धिमान होना बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धि का संतुलन होना चाहिए। आज पूरा का पूरा युग बुद्धिमत्ता का युग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पहले पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे लेकिन कशाएं मंद थी। आज हम बढ़िया सूटेड बूटेड बच्चों को तो आज पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजें चाहिए। यूनिफॉर्म ठीक है कि नहीं है, बस्ता ठीक है कि नहीं है, बाकी सब चीजें गाड़ी भेजने के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, पढ़ रहे हो ठीक कि नहीं पढ़ रहे हो, इससे क्या मतलब, बाकी सब चीजें ठीक होना चाहिए। जैसे कि उन्हीं से जैसे जूते से ना बुद्धि आती हो, आती है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं आती। हमने बिना जूते पहने लोगों को भी बहुत होशियार और पढ़ते हुए देखा है, लेकिन क्या क्राइटेरिया बन गया हमारा बुद्धिमत्ता का? बुद्धिमत्ता हासिल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक उद्देश्य तो होना चाहिए। मेरी अपनी बुद्धि, मैं जब देखता हूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी आपस में इतना झगड़ा करते हैं, ट्यूनिंग नहीं बनती है, मैरिज होने के बाद फैमिली पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो मुझे लगता है इनकी डिग्री और इनके इतने बुद्धिमान होने के मायने क्या है। पढ़ा लिखा होकर के आदमी और इस तरह करे तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई वो सब व्यर्थ मालूम पड़ती। इससे अच्छा तो ये था कि नहीं पढ़े लिखे होते, कम से कम कषाय तो मंद होती, तो ही शायद हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता। शेर यात्रा लेके गए थे तीर्थ यात्रा, 50 लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा ले गए थे, और शेख का बेटा 4 बजे सुबह की प्रार्थना में उठ करके प्रार्थना करके वापस लौटता था। पिता सामने आ गए तो उसने कहा कि इतने जाहिल और काहिल किस्म के आलसी लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना ले जा रहे, 4 बजे की प्रार्थना सभा में कोई भी तो नहीं उठा, मैं अकेले प्रार्थना करके आया। तब शेख ने मालूम क्या कहा था कि इससे अच्छे तो तुम भी सोए रहते तो ज्यादा अच्छा। मुझे ये उदाहरण हमेशा याद आ जाता है कि क्यों हम इस तरह से जो है अपनी बुद्धि का, इससे अच्छा तो था कि तुम भी प्रार्थना ही करता, इससे अच्छा तो था कि अगर दूसरे की निंदा ही करनी थी, अगर दूसरे के बारे में मिथ्या विचार ही करने थे, तो इससे अच्छा था कि नहीं पढ़ते लिखते, गवार ही अच्छे रहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़े लिखे, खूब पढ़े लिखे, लेकिन उसके साथ साथ उस बुद्धि का सदुपयोग भी कर सके। बहुत भावनाएं हैं हमारी, रोज मंदिर की घंटी बजाते हैं, रोज भगवान की मूर्तियां जमा करके उस पर जल की धारा छोड़ते हैं, महाराज पहुंच गए तो महाराज को ही दिखा दो, कलशा दिखा दो, एकाध बार वही जल की धारा अपने शरीर पर डाली है, अपने मन पर डाली है पवित्र होने के लिए। भगवान तो बिल्कुल परम पवित्र हैं, परम औदारिक शरीर को धारण करने वाले हैं, उनको अभिषिक्त करने के मायने हैं कि मैं अपनी राग द्वेष की मलिनता को कम कर रहा हूं, मेरी भावनाएं बहुत उज्जवल हैं, मैं यहां से जब निकलूंगा तो मेरी भावनाएं जोर मारेंगी कि मैं महाराज के पैर छूं दौड़ करके, क्योंकि उनके चरणों की रज लगाऊंगा तो पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन मेरी ये भावनाएं अगर असंतुलित हो जाए, विवेक शून्य हो जाए अगर भावना, तो वो भावना ज्यादा कार्यकारी नहीं, हल्ला मचाने का नाम धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। जो भी चीज श्रेष्ठ घटित होती है साइलेंटली घटित होती है, मौन में घटित होती है, नॉइस में घटित नहीं होती, म्यूजिक में घटित होती है। नॉइस और म्यूजिक में बहुत फर्क है, और आज हम अपनी भावनाओं के चलते नॉइज बहुत है, म्यूजिक नहीं है, जीवन का कोई संगीत नहीं है, एक बहुत अट्रेंडम अपनी। अपन ने तीनों बातें समझ ली, शरीर जो दूसरे के लिए उपकारी हो सके और अपने स्वयं का कल्याण जिससे हो सके, यही शरीर का संतुलन है। बुद्धि भी वही जो हमारी कषायों को मंद कर सके, हमें शांत बनाए रखे। प्रबुद्ध और शांत होना दोनों चीजें बहुत कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन दोनों साइमल्टेनियस होने वाली हैं। जो जितना प्रबुद्ध है वो उतना ही शांत भी होगा, कसौटी है ये, लेकिन दोनों चीजें एक साथ मिलना बहुत कठिन होता है। तो बुद्धिमत्ता के साथ कषायों की मंदता भी हो, भावनाओं के साथ विवेक होना आज के समय में बहुत मुश्किल है। हमारी तो बहुत श्रद्धा है लोग पूजा कर रहे हैं और वहां से आए और उन्होंने बड़े जोर से घंटी बजाई और ओम जय 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 पूरा गुंजायमान कर दिया। आपकी पूजा का जो हो आप जानो, हमने तो अपनी भावना व्यक्त की। ये भावना व्यक्त करने का ढंग है? मुझे तो लगता है कि ये भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग नहीं है। लेकिन क्या करें, आज के समय में यही सारी चीजें लगातार देखने में आती हैं और इन्हीं को हम शायद धर्म मान करके और इन्हीं से अपने व्यक्तित्व को ऊंचा मान करके इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। एक तरफ धर्म की क्रियाओं को दोहराने की होड़ है, दूसरी तरफ अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ है। होड़ दोनों जगह है, कहीं कोई अंतर नहीं है। दोनों तरह के आंदोलन हैं। एक आंदोलन है जो कि धर्म के नाम पर क्रियाओं को करने का आंदोलन है और दूसरा है विभिन्न प्रकार की खोजें, न्यू टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हुआ उसका? कंप्यूटर का क्या हुआ? इंटरनेट का क्या हुआ? सिवाय वल्गैरिटी के और कुछ दे रहा है वो? मुझे बताइए, 90% केसेस में इंटरनेट पर सिर्फ वल्गैरिटी है, उधर कंप्यूटर खोला नहीं और उधर जो है अश्लीलता। ऐसे ऐसे सुनने में तो आते हैं। मैं तो उन सब चीजों से वाकिफ तो नहीं हूं, आप तो उन्हीं में सब में रचे पचे हुए हैं, आप बताइए, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। हमने उस पर क्या किया? इधर हमारे पास इतने साधन हैं, हम एक मिनट के अंदर जो है इतना बड़ा पंडाल सजा सकते हैं जिसमें हम धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर एक मिनट के अंदर और दुनिया भर से संपर्क कर सकते हैं, इतनी फैसिलिटी है, लेकिन उन सब का हमने क्या उपयोग किया है? ये वर्तमान में देखने की चीज। अंधानुकरण से बचना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए और सबसे मैत्री का भाव डेवलप करना चाहिए। ये तीन चीजें अगर हमारे भीतर हैं तो जीवन श्रेष्ठ बनने में कोई देर नहीं लगेगी। आज अंधानुकरण है, किसी भी मामले में देख लो, इसलिए गड़बड़ा है संतुलन शरीर का, बुद्धि का और भावनाओं का संतुलन गड़बड़ाने का कारण यह है कि अंधानुकरण। इन्होंने अगर इतने बड़े भव्य पंडाल में पंचकर्ण करवाया था तो मैं इनसे कम थोड़ी हूं, मैं इससे बड़े भव्य पंडाल में पंचकर्ण करवा सकता हूं। इसके लिए मुझे अपना जीवन दांव पे लगाना पड़े, मुझे अपनी सारी तपस्या झोंकनी पड़े तो मैं झोंकने तैयार हूं। मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूं, आप क्षमा करिएगा, लेकिन क्या करूं, देखता हूं और यहां पर भी वही चीज देखने में आती है, सब दूर वही चीज देखने में आती है। एक पीड़ा होती है कि जो एक हमें मिला था विरासत में इतना श्रेष्ठ जीवन जीने का ढंग, हमने उस जीवन जीने के ढंग को कितना विकृत करके और जीना शुरू कर दिया और उसी में अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा मान रहे हैं। और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में भी देखें कि जिसके पास जितना बढ़िया कार होगी, जिसके पास जितना बढ़िया बंगला होगा, जिसके पास जितनी बढ़िया पहनने की पोशाक होगी, वो शायद उतना ऊंचे व्यक्तित्व वाला होगा। अंधानुकरण है, उनके पास ऐसा है तो मेरे पास उससे कम कैसे हो सकता है? भौतिक क्षेत्र में भी और इधर आध्यात्मिक, अध्यात्म तो नहीं मानता मैं उसको, धार्मिक कह लो, अध्यात्म की तो दूर दूर तक अभी हवा ही नहीं है, अभी तो धर्म की भी बात छोड़िएगा। ना इधर ये विज्ञान दुरुस्त है, ना इधर ये धर्म की प्रक्रिया दुरुस्त है। दोनों तरफ अगर आंख उठा के ठीक ठीक देखते हैं, जैसा वस्तु स्वरूप है ठीक वैसा देखते हैं, तो दोनों तरफ बहुत सारे संशोधन और बहुत सारे संतुलन की आवश्यकता है, लेकिन हर जगह एक अंधानुकरण शुरू हो गया। भैया दूसरे के जीवन से प्रेरणा लेना कोई बुरी बात नहीं है, दूसरे के जीवन से अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने के लिए भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण अपने सामने रख करके अपने जीवन को भगवान महावीर स्वामी के अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्न करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन में वो योग्यता भी तो हासिल करें। उस योग्यता के बिना और हम उस चीज को प्राप्त करना चाहें, भगवान महावीर स्वामी तो बनना है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कैसे बने थे? अपने विषय कषायों को, पांच इंद्रियों और मन को जीत करके बने थे, या कि सिर्फ अकेले नग्न होकर के खड़े हो जाने से कोई भगवान महावीर स्वामी बन सकता? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, उनकी क्रियाएं दोहरा लेने से कोई भगवान महावीर स्वामी ने जैसा जैसा किया था वैसा वैसा क्रियाएं दोहरा लेने से कोई भगवान महावीर स्वामी बन जाता होगा तो होता तो आज तो बहुत सारे लोग भगवान महावीर स्वामी बन गए होते। लेकिन क्यों नहीं होता है? उसके साथ साथ जो उन्होंने प्राप्त किया था, वो जो समता उन्होंने प्राप्त की थी, वो जो अपनी कषायों को जीता था, वो मेन चीज थी भगवान महावीर स्वामी को भगवान महावीर स्वामी बनाने वाली थी। कौन क्योर योर सेल्फ, अपने आप को जीत लिया था उन्होंने। तो अंधानुकरण ना करके और अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करें और कंपेयर नहीं करें। एक नाटक में एक विदूषक भी होता है जो मंच पर आकर के सबको हंसवा देता है, कॉमेडियन भी होता है, वो सबको हंसवा देता है, उसका भी अपना रोल है, उसकी भी अपनी योग्यता है। और एक एक नायक भी है, वो भी मंच पर आकर के जैसा उसका पार्ट है वैसा अदा करता है। नायक ये कहे कि पूरे के पूरे नाटक का मैं ही सबसे श्रेष्ठ पर्सन हूं, ये ठीक नहीं है। विदूषक अपनी जगह पर अनकंपेरेबल है और नायक भी यूनिक है। हम अगर देखें अपने भीतर झांक करके तो हर चेतना अपने आप में इंडिविजुअली यूनिक है, हर आत्मा अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय है, किसी से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। इवन भगवान तक से हम अपने को कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी अपनी चेतना अलग है, हमारी अपनी चेतना अलग है, उनकी आत्मा अलग है। उनका जिसको अपनी भाषा में धर्म की भाषा में कहते स्वचतुष्टय, उनका अलग है, हमारा स्वचतुष्टय अलग है। कठिन भाषा हो जाएगी, लेकिन हम सीधी सीधी भाषा में क्यों नहीं समझते हैं कि हमारा अपना जीवन अलग है, दूसरे का जीवन अलग है, वो अपने ढंग से अपने आप में पूर्ण है और हम अपने ढंग से अपने आप में पूर्ण है। क्यों नहीं हम अपने आप को ठीक अपनी उस पूर्णता को प्रकट करते हैं? हम क्यों देखते हैं ये कि उनसे थोड़ा ज्यादा भर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। किसी भी मामले में जीवन और व्यक्तित्व तभी तुम्हारा अच्छा नहीं बन पाता है। या तो हम दूसरे को देख करके अपने को थोड़ा सा ठीक बना करके और उसी में संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं और अपने को बहुत सुपीरियर मान लेते हैं, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। या कि हमारे अंदर और लोगों की अपेक्षा बहुत कमियां हैं, ऐसा मान करके हम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं, हम अपने हीनता की ग्रंथि अपने भीतर पाल लेते हैं कि मेरे से संसार में कुछ नहीं होने वाला, यह कि मैंने जो कुछ करना था वो मैंने सब कुछ कर लिया। दो ही चीजें तो है, श्रेष्ठता और हीनता की ग्रंथि आज देखने में आती है, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। हम जिन मामलों में श्रेष्ठ हैं उनमें और श्रेष्ठ बने, जिन मामलों में हम कम हैं उन मामलों में हम उस अपनी कमी को दूर करने का प्रयत्न करें, बस इतना ही तो है। और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, ये तो सिर्फ वाणी में रह गई, जीवन से तो खलास हो गई, राय भी हो गई। सबसे मैत्री सत्येषु मैत्रिम तो लिखा तो है, गुणवान को देख करके ईर्ष्या ना हो, उसका अनुकरण करें, उसे देख करके हर्षित हो, यह भी खत्म हो गया। दीन दुखी को देख करके करुणा भीतर नहीं आती है, कोई गलत रास्ते पर चलता है तो उससे घृणा जरूर हो जाती है, लेकिन मन में यह विचार नहीं आता कि काश ये भी सच्चा रास्ता पा लेता। अपन स्वयं भी जब किसी गलत रास्ते पर निकल जाते हैं तो मन में यह भाव नहीं आता कि कैसे मैं सच्चे रास्ते पर फिर से आ जाऊं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अभी अपन यही हासिल नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने जीवन में एक बार बैठ करके एनालिसिस करें, अपन ने बैठ करके एक साथ एनालिसिस किया है कि शायद यहां यहां हमारी थोड़ी सी कमियां हैं, उनको दुरुस्त कर लीजिएगा। मेरी बातों से अगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया हो आपका फंक्शन, हो सकता है मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे कि भीतर चोट तो पहुंचती है, मैं भी सुन रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको मैं पहले सुन रहा हूं, मुझे भी चोट पहुंचती है, मैं अपने को आपसे बहुत अलग नहीं मानता हूं, आपने मुझे थोड़ा सा ऊंचे बिठा दिया है और मुझे कहने का अवसर दिया है, बस इतना ही मानता हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम सब यहां इस संसार में अपनी ही विषय कषायों से भटके हुए लोग हैं और हम सबको एक साथ मिलकर के अपने अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बनाने के लिए प्रयत्न करना है। हम तो सिर्फ विचार कर रहे हैं। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का एक छोटा सा उदाहरण अपन देख लें, जो कि दिखने में भी आता है और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आज ही से जितना जिससे बनता है। मैं तो कहता हूं कि 100% तो कोई नहीं कर सकता। हम भगवान नहीं है, ना भगवान की हैसियत के हैं कि हम अपने जीवन को पूरा उनके जैसा बना सकें, पर हाँ हम 0.1% तो कर ही सकते, 1% भी नहीं तो 0.1% तो कर ही सकते। हम अपने जीवन में उतनी अच्छाइयां तो ला ही सकते हैं। बर्लिन घूमने गए थे जर्मनी में, यशपाल जैन उनका संस्मरण है, अब तो नहीं रहे, गांधी जी के तीनों शिष्य नहीं रहे, न यशपाल जैन रहे, न जैनेन्द्र कुमार रहे, न अक्षय कुमार रहे। आज की पीढ़ी इनको शायद पहचानती भी नहीं होगी कि ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने साथ साथ सबके लिए कुछ किया है, जिन्होंने अपने नाम के साथ जैन लगा करके अपने जैनत्व को सार्थक किया। और हम तो अपने नाम के साथ जैन लगा करके मात्र अपने जैन होने का स्वांग रचते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही लगने लगता है। कहीं कोई एक भी गुण हमारे भीतर अगर हम खुद झांक के देखें, दूसरे को मौका मत देना अपने भीतर झांकने का, अपने आप झांक करके देखना कि कहीं कोई एकाध भी जैन के मायने अपने विषय कषायों को जीतने वाला, अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रण में रखने वाला है क्या? बहुत थोड़े से लोग, उंगलियों पर गिनने लायक लोग मिलेंगे। क्यों नहीं हम उस लिस्ट में शामिल हैं? अब अपने भीतर ये उत्पन्न होना चाहिए कि मैं भी उसी में शामिल हूं, बाकी सब चीजें छोड़ करके। बर्लिन की यात्रा पर गए थे, जर्मनी में घूमने गए थे, भाषा नहीं जानते थे, जर्मनी भाषा नहीं जानते थे, कैसे घूमे जर्मनी, पता किया कि कोई मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि हां दो भारतीय हैं हॉस्टल में अध्ययन करने के लिए आए हैं, वहां पहुंचते हैं, वो एक ही रूम में मिल जाते हैं दोनों भारतीय। किस प्रांत के और किस प्रदेश के थे ये तो मुझे याद नहीं है, और जब दोनों से अलग अलग पूछते हैं कि तुम्हें तो जर्मनी आती है और हिंदी भी आती है, मेरे साथ मुझे थोड़ा सा इसकी बर्लिन की यात्रा करवा दोगे, मुझे देखना है, मुझे समझा देना, तो एक अपने अस्वस्थ होने का बहाना बनाता है और दूसरा अपनी पढ़ाई का बहाना बना करके दोनों ही इनकार कर देते हैं। बहुत दुखी होते हैं वे, इतनी भी मैत्री नहीं है, इतना भी प्यार नहीं है, इतना भी अपने जीवन से दूसरे के जीवन को लाभ देने का भाव नहीं है। दोनों भारतीय थे, क्या अपेक्षा लेके गए थे कि ये तो भारतीय है, मेरी मदद तो करेंगे? और वहां से निराश होकर के वो लिखते हैं कि जब मैं सीढ़ियां उतर रहा था तब दूर एक 20 बरस का नौजवान खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। मैं जब उसके पास से गुजरा तो उसने पूछा टूटी फूटी हिंदी में कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, तो मैं चकित रह गया कि वे जो जिनके पास मैं दोनों भारतीय मान करके मदद मांगने गया था, वे दोनों मदद से इनकार कर रहे हैं और इससे मैंने कुछ कहा भी नहीं और ये कह रहा है वो भी टूटी फूटी हिंदी में कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा कि आप जर्मनी मूल के हैं क्या? उसने कहा कि हां, आप मेरे देश में मेहमान हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता? उन्होंने कहा मुझे जर्मनी नहीं आती और मुझे बर्लिन घूमना है, मुझे समझा सकते हो यहां मेरे साथ चल करके? उसने कहा बस 2 मिनट मेरा वेट करिए, मैं आता हूं। और दौड़ करके उसी हॉस्टल में अपने कमरे से रेडी होके अपने साथ में बैग लेकर के और आता है कि चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाता हूं। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन कि सीमा पर जब पहुंचता है तो वहां दीवाल खड़ी हुई देख करके कहता है कि आप अपने देश जाकर के ये मत कहना कि हम लोगों के बीच दीवाल खड़ी हो गई, हम लोग जल्दी से कुछ कर रहे हैं जिससे कि ये दीवाल टूट जाएगी। आप अपने देश में यही कहना कि बस हम लोग थोड़े ही दिनों में एक हो जाएंगे। और पूरा देश अपना घुमाता है, 3 दिन तक लगातार यशपाल के साथ में रहता है वो, और ठीक समय पर उन्हें पूरा देश अपना घुमा करके खुश खुश विदा देने लगता है। तो यशपाल उसे धन्यवाद देते हैं। जब उसे धन्यवाद देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हैं तो उसके आंसू आ जाते, उस नवयुवक के आंसू आ जाते। आना चाहिए थे यशपाल के, लेकिन उस नवयुवक की आंख भर आती है कि आप मुझे धन्यवाद मत दीजिएगा, क्योंकि आपने 3 दिनों में मुझे जो प्यार दिया है वो मुझे मेरे देश में कोई नहीं दे सकता। आपने भारतीय होकर के भी मेरे देश में मुझे बहुत प्यार दिया है। बताइए क्या है ये संबंध, क्या है ये धर्म नहीं है क्या ये? वास्तव में तो यही धर्म है। जैन धर्म तो यही सिखाता है, और कोई भी धर्म अहिंसा धर्म तो यही सिखाता है कि हमारा मन इतना निर्मल हो, हमारा मन इतना पवित्र हो, इतना मैत्री से भरा हुआ हो, तभी शायद हम अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में जो शरीर बुद्धि और भावनाएं मिली हैं वे संतुलित हों, और हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें और उसको अपने जीवन में प्रकट करने के लिए प्रयत्न करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आज चूंकि रविवार है, आज अपन नमोकार मंत्र एक साथ करेंगे, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बना सकें।
Sit down.
विद्यासागर मुनि।